ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। स्थानीय तह उपचुनाव हुआ संपन्न। निर्वाचन आयोग ने कहा करीब 62% हुआ है मतदान। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के औपचारिक दौरे पर कल बीजिंग को करेंगे प्रस्थान। रोलपा की सुन छहारी गांव पालिका में निर्माणाधीन हैंगिंग ब्रिज की दीवार ढहने से 5 मजदूरों की मौके पर हो गई मौत। और सीरिया के एलेपो शहर में विद्रोहियों के हमले का सामना करने में नाकामयाब होकर सेना लौटी वापस। एलेपो शहर अब सरकार के नियंत्रण से बाहर। अब समाचार विस्तार से। स्थानीय तह में रिक्त विभिन्न 41 पदों के लिए उपचुनाव अंतर्गत आज मतदान शांतिपूर्ण रूप में संपन्न हुआ। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता नीता पोखरेल के मुताबिक उपचुनाव हुए स्थानीय तहों और वार्डों की अंतिम मतदाता नामावली में 2,26,799 मतदाता थे। उनमें से 62% मतदाताओं ने मतदान किया है। उन्होंने बताया कि मतदान संपन्न होने के बाद मतपेटिकाओं को सुरक्षित रूप में संकलित कर मतगणना शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसी बीच दार्चुला की दूहू गांव पालिका वार्ड नंबर 5 में नेपाली कांग्रेस के धन सिंह कुंवर 376 मत प्राप्त कर विजयी हुए हैं। वहीं नेकपा एमाले के उम्मीदवार मान सिंह बड़ाल को 358 मत प्राप्त हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकृत पुष्पराज पांडे से मिली जानकारी के मुताबिक 20 मत बदर हुए थे। जाजरकोट की कुशेक गांव पालिका वार्ड नंबर 7 में कांग्रेस के खम बहादुर सिंह 347 मत प्राप्त कर विजय हुए हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी माओवादी केन्द्र के गोरख बहादुर नेपाली को 332 मत प्राप्त हुए। आपको बता दें कि 18 मत बदर हुए थे। इसी तरह कालीकोट की तिला गुफा गांव पालिका वार्ड नंबर 4 में नेपाल मजदूर किसान पार्टी के खड़क राज शाही 143 मत प्राप्त कर विजय हुए हैं। इसी तरह महोत्तरी की राम गोपालपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 2 और कंचनपुर के भीम दत्त नगर पालिका वार्ड नंबर 6 के उपचुनाव की मतगणना शुरू हुई है। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। इसी तरह गोरखा नगर पालिका वार्ड नंबर 5 में भी मतगणना शुरू हुई है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने स्थानीय तह उपचुनाव अंतर्गत मतदान के निष्पक्ष धांधली रहित और उत्साह के साथ संपन्न होने पर सबको धन्यवाद दिया है। आज एक बयान जारी कर सभापति देउवा ने कहा है कि देश के विभिन्न स्थानीय तहों के 41 सीटों के लिए हुए मतदान में उत्साहपूर्ण और सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग और समर्थन ने लोकतंत्र के प्रति नागरिक के विश्वास को और अधिक प्रमाणित कर दिया है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने स्थानीय तह उपचुनाव अंतर्गत मतदान के शांतिपूर्ण रूप में संपन्न होने पर सभी को धन्यवाद दिया। गृहमंत्री लेखक ने मतदान को शांतिपूर्ण रूप में संपन्न करने में सहयोग देने वाले सभी मतदाताओं, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलों, सुरक्षाकर्मियों, निजामती कर्मचारियों, संचारकर्मियों समेत संबंधित सभी के प्रति आभार जताया है। ये जानकारी गृहमंत्री के सचिवालय ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के औपचारिक दौरे के लिए कल बीजिंग को प्रस्थान करेंगे। चीन के प्रधानमंत्री ली चांग के मैत्रीपूर्ण आमंत्रण पर प्रधानमंत्री ओली कल मार्गशीर्ष 17 गति से 20 गति तक चीन के औपचारिक दौरे पर रहेंगे। दौरे के दरमियान प्रधानमंत्री ओली के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बीजिंग में भेंटवार्ता के कार्यक्रम है। ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय ने दी। प्रधानमंत्री ओली अपने चीनी समकक्षी ली के साथ द्विपक्षीय भेंटवार्ता कर आपसी हितों के विविध विषयों में विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री के विभिन्न कार्यक्रम चीन भ्रमण के दौरान निर्धारित है। चीन दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य भी होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ओली के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउवा, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार विष्णु प्रसाद रिमाल, प्रधानमंत्री के आर्थिक एवं विकास सलाहकार डॉ युवराज खतिवड़ा, विभिन्न सांसदगण, विशिष्ट श्रेणी के सरकारी अधिकारीगण, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि, संचारकर्मी लगातार शामिल रहेंगे। मार्गशीर्ष 20 गति उनके स्वदेश लौटने के कार्यक्रम है। सरकार ने गन्ने का न्यूनतम खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 585 रूपये निर्धारित किया है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को आज साझा करते हुए सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि चालू आर्थिक वर्ष के लिए गन्ने की उत्पादन लागत, उगाही खर्च और मुनाफा समेत को जोड़कर गन्ने का न्यूनतम खरीद मूल्य निर्धारित किया गया है। बैठक में एशियाई विकास बैंक से क्लाइमेट रिलीजियंट लैंडस्केप एंड लाइव हुड्स परियोजना के लिए प्रस्तावित 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान और 10 मिलियन डॉलर कर्ज स्वीकार करने का निर्णय किया है। इसके अलावा नवीनतम यांत्रिक सिंचाई परियोजना क्रियान्वयन के लिए प्राप्त होने वाले 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर्ज और 15 मिलियन डॉलर अनुदान को स्वीकार करने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद ने किया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। रोल्पा में निर्माणाधीन हैंगिंग ब्रिज की दीवार गिरने से आज 5 मजदूरों की दबने से मौत हो गई। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख डीआईजी कुबेर कठायत के अनुसार सुनछाहारी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 गांव में हैंगिंग ब्रिज की दीवार गिरने से 45 वर्षीय दूजमान परियार, 31 वर्षीय ओम परियार, 40 वर्षीय सुवित्रा परियार, 27 वर्षीय आयती परियार और 66 वर्षीय देवीराम परियार की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि पुल के निर्माण में 7 मजदूर कार्यरत थे और उनमें से 2 दीवार ढहते देख भागने में सफल रहे। आगामी पोष 4 गति से दवा दुकानों में दवा विक्रेताओं के लिए पोशाक और पहचान पत्र अनिवार्य किया जाएगा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल के अनुरोध पर पहले चरण में फार्मासिस्टों की पहचान उजागर करने के लिए पोशाक और परिचय पत्र को अनिवार्य बनाने का नेपाल फार्मेसी काउंसिल का निर्णय आगामी पोस्ट 4 गति से लागू किया जाएगा। परिषद ने कहा कि फार्मासिस्टों और सहायकों के लिए सफेद एप्रन और पहचान पत्र के साथ पोशाक अनिवार्य होगी। परिषद के रजिस्ट्रार संजीव कुमार पांडे ने कहा, इस निर्णय के अनुसार केवल आधिकारिक व्यक्ति ही दवाओं की बिक्री और वितरण में शामिल होंगे और यदि कोई गलत काम पाया जाता है तो कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। मंत्री पौड़ेल ने इस व्यवस्था की निगरानी कड़ी करने का आग्रह किया है। मंत्री पौड़ेल ने औषधि व्यवस्था विभाग को दवाओं की बिक्री और वितरण को व्यवस्थित और नियमित करने के लिए निगरानी बढ़ाने के लिए सचेत किया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि सरकार राजनीतिक स्थायित्व के साथ ही संघीयता के सबलीकरण के लिए दृढ़ निश्चय होकर काम कर रही है। आज काठमांडू में आयोजित 12 खड़ी कथा प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने कहा कि वर्तमान गठबंधन की सरकार देश को नई दिशा देने के हिसाब से नीतिगत सुधार से लेकर संस्थागत व्यवस्थापन के कामों में दृढ़ होकर काम कर रही है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल समक्ष नवनियुक्त राजदूतों ने पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति कार्यालय में आज आयोजित विशेष समारोह में विभिन्न देशों के लिए नियुक्त नेपाली राजदूतों ने पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लोक दर्शन रेग्मी, संघीय गणतंत्र जर्मनी के लिए डॉ शेल रूपा खेती, सऊदी अरेबिया अधिराज्य के लिए डॉ नरेश विक्रम ढकाल और ऑस्ट्रेलिया के लिए चित्रलेखा यादव ने शपथ ली। जनकपुर में मनाए जाने वाला सप्ताह भर चलने वाला सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव आज से विधिवत शुरू हो गया है। त्रेता युग में भगवान श्रीराम और जनक नंदिनी सीता के विवाह की स्मृति में जनकपुर धाम में हर वर्ष विवाह पंचमी महोत्सव मनाने की परंपरा है। सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव के पहले दिन आज नगर दर्शन कार्यक्रम, दूसरे दिन कल सोमवार को फुलबारी लीला, तीसरे दिन मंगलवार को धनुष यज्ञ, चौथे दिन बुधवार को तिलकोत्सव, पांचवें दिन मटकोर कार्यक्रम और मार्गशीर्ष 21 गति को राम सीता स्वयंवर और विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी तरह महोत्सव के अंतिम दिन मार्गशीर्ष 22 गति को राम कलेवाकर अयोध्या से बराती बनकर आए साधु संत की विदाई के बाद विवाह पंचमी महोत्सव का विधिवत समापन किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सीरिया के विद्रोही गुट ने राष्ट्रपति बशीर अल असद के शासन का विरोध किया है। इसके बाद से सरकारी सुरक्षा बल अलेपो शहर से पीछे हट गए हैं। सीरियाई सेना ने यह स्वीकार किया है कि सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेपो के बड़े हिस्से में विद्रोही घुस आए हैं। हालांकि सेना ने जवाबी हमला करने की बात कही है। ब्रिटेन स्थित संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक बुधवार को शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक 300 लोग मारे गए हैं। इनमें 20 आम नागरिक भी शामिल हैं। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद सरकार का समर्थन करने वाले इस बात से नाराज है कि अलेपो से सरकारी सेना पीछे हट गई है। इस बीच रूस ने अलेपो के कुछ हिस्सों पर हवाई हमले किए। 2016 के बाद ये पहली बार है जब रूस ने अलेपो के कुछ हिस्सों पर हवाई हमले किए हैं। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। स्थानीय तह का उपचुनाव हुआ संपन्न। निर्वाचन आयोग ने कहा करीब 62% हुआ है मतदान। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के औपचारिक दौरे पर कल बीजिंग को करेंगे प्रस्थान। रोलपा के सुनचाहरी गांवपालिका में निर्माणाधीन हैंगिंग ब्रिज की दीवार ढहने से 5 मजदूरों की मौके पर हो गई मौत। और सीरिया के अलेपो शहर में विद्रोहियों के हमले का सामना करने में नाकामयाब होकर सेना लौटी वापस। अलेपो शहर अब सरकार के नियंत्रण से बाहर। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।